नमस्कार आदाब दोस्तों, समाचारों में जिस राजनीति का जिक्र होता है रोज, आखिर कैसे हुई थी उसकी खोज? राजनीति के दांव पेच और अधिकारों कर्तव्यों की सारी बातें जानना चाहते हैं तो सुने आज का राजनीति शास्त्र विशेष क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम।
डॉक्टर नंद किशोर शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक हूँ। मोबाइल वाणी ने आपसे मुखातिब होने का मौका दिया, इसके लिए मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह पॉलिटिकल साइंस का 39वां एपिसोड है। इसके पूर्व 38वें एपिसोड में आपको शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता का उदय और विकास, गुटनिरपेक्षता का अर्थ, गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों के अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चुनौतियों के संबंध में जानकारी प्रदान की थी। इस एपिसोड में मैं आपको शीत युद्ध काल में भारत और शीत युद्ध के संबंध में प्रारंभिक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जहां तक भारत और शीत युद्ध का सवाल है, तो विश्व के एक बड़े देश तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले भारत ने सचेत और सजग ढंग से अपने को दोनों महाशक्तियों की गुटबंदी से अलग रखा। दूसरी तरफ भारत ने विश्व के उन सभी 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के गुट में जाने का भरपूर विरोध किया, जो उपनिवेशों के चंगुल से स्वतंत्र हुए थे। उन दिनों भारत की विदेश नीति न तो नकारात्मक थी और न निष्क्रियतावादी ही। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुट निरपेक्षता विश्व राजनीति से पलायन की नीति नहीं है। यदि वह पलायन की नीति रहती तो भारत शीत युद्ध कालीन दोनों महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता की जकड़ कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में कैसे रहता। उल्लेखनीय है कि भारत ने दोनों महाशक्तियों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने का प्रयत्न किया और इस तरह इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का स्वरूप ग्रहण नहीं करने दिया। भारत के राजनेताओं और राजनयिकों का आमतौर से उपयोग शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए हुआ। उदाहरण स्वरूप 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में कोरियाई युद्ध के दौरान भारत की भूमिका को हम उद्धृत कर सकते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अन्य देशों को भी ऐसे कामों में लगाए रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने अनवरत उन सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने का प्रयास किया जो किसी भी रूप में अमेरिका तथा सोवियत संघ के खेमे से जुड़े नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्र कुल में अपनी आस्था जताई, जिसने दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की जकड़ कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई। कुछ लोगों की मान्यता है कि गुट निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है और यह उदार आदर्श भारत के अपने वास्तविक हितों से बेमेल है। हम इससे इसलिए सहमत नहीं हो सकते क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो रूपों में भारत के हित साधन में सहयोग किया है। पहला, गुट निरपेक्षता के चलते भारत ने ऐसे निर्णय लिए जिससे सिर्फ उसका हित साधन हुआ, न कि महाशक्तियों और उसके खेमों के देशों का। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि वह किसी न किसी महाशक्ति के नजदीक रहे। यदि कोई एक महाशक्ति उसके विरुद्ध जाए तो दूसरी महाशक्ति के निकट वह जाने का प्रयास करे। यदि भारत को यह महसूस हो जाता कि महाशक्तियों में से कोई एक भारत पर अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ मुड़ सकता था। लेकिन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को अनेक लोगों ने सिद्धांत विहीन कहकर इसकी आलोचनाएं की हैं। उनका तर्क था कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही है और अनेक बार स्वयं भारत का रुख अपने आप में विरोधाभासी रहा है। भारत पर यह आरोप लगाया गया कि अन्य देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करके अपने को सोवियत गुट में सम्मिलित कर लिया। इसके विपरीत भारत सरकार का यह दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के दौरान उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सोवियत संघ के साथ दोस्ती की, इस संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत का कहना था कि इस संधि के बावजूद वह संयुक्त राज्य अमेरिका सहित किसी भी देश के साथ अच्छा संबंध बना सकता था। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए होड़ लगा दी। उनके बीच उत्पन्न होड़ के चलते विश्व दो विरोधी गुटों में बट गया। दोनों महाशक्तियों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को अपने अपने गुटों में सम्मिलित करने का प्रयास किया। दोनों गुटों के बीच उत्पन्न शीत युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय जगत में अविश्वास एवं असुरक्षा का वातावरण बन गया और क्यूबा जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से दोनों महाशक्तियों में तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई। इस बीच एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों ने भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो तथा मिस्र के कर्नल नासिर के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता का सहारा लिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।